मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आज आपको शाहजहाँ के बारे में, जो 1627 से 1658 ईस्वी के विषय में पढ़ने जा रहा हूँ। प्रायः 30 वर्ष का शाहजहाँ का शासनकाल मुगल साम्राज्य के वैभव और शक्ति की प्रकाष्ठा का था, जिसके कारण उसे मुगल काल का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के समय में स्थापित हुई मुगलों की श्रेष्ठता शाहजहां के समय में न केवल स्थापित रही बल्कि विकसित भी हुई। निसंदेह औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु वह मुगलों की शक्ति को संचित और संगठित न रख सका। उसके समय के विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की एकता और शक्ति में छिद्र कर दिए। शाहजहां के समय तक ऐसा संभव न हो सका। शाहजहां के समय सभी विद्रोह सरलता से दबा दिए गए और मुगल साम्राज्य की सीमाएं शांत और सुरक्षित रहीं। जब तक शाहजहां बीमार नहीं हुआ और उसके पुत्रों में राज सिंहासन के लिए युद्ध नहीं हुआ, तब तक मुगल साम्राज्य की एकता और दृढ़ रही और शाहजहां की शक्ति का मुकाबला सरलता से भारत में कोई ना कर सका। शांति, सुरक्षा और संपन्नता की दृष्टि से भारत में उसके समय कोई दुर्बलता न थी, परंतु दूसरी तरफ शाहजहां का समय दुर्बलताओं के आरंभ होने का समय भी था। चाहे वह प्रकट रूप में उसके समय में ना आई हो, लेकिन आरंभ होने का समय रक्तपात के द्वारा सिंहासन पर अधिकार, कंधार और मध्य एशिया में मुगलों को सैनिक सफलता, युद्धों, शान शौकत और इमारतों पर किया गया अपव्यय तथा धार्मिक असहिष्णुता का आरंभ कुछ ऐसी बात थी जिन्होंने भविष्य को प्रभावित किया, और जो प्रभाव उनका पड़ा वह मुगल साम्राज्य के लिए हित करना था। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई कोष्टक में जोधाबाई और भानमती के नामों में भी पुकारा गया है। खुर्रम अपने महापिता अकबर का लाड़ला था। खुसरो के विद्रोह के अवसर पर खुर्रम को राजधानी की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। 1606 ईस्वी में उसे 8000 जात और 5000 सत का सवार का पद प्राप्त था। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। खुसरो के विद्रोह के पश्चात से खुर्रम को गद्दी का उत्तराधिकारी समझे जाने लगा। उसने अपनी योग्यता से उसे सिद्ध भी किया। मेवाड़, कांगड़ा और दक्षिण के अभियानों में जो सफलता प्राप्त की, उससे उसकी योग्यता स्पष्ट हुई। वह नूरजहां के गुट का सदस्य भी रहा और 1622 ईस्वी तक निरंतर राज्य में सम्मान और पद प्राप्त करता रहा। उसे शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया गया और बड़ी से बड़ी जागीर उसे प्राप्त हुई, परंतु उसके पश्चात उसकी कठिनाइयां आरंभ हो गई। नूरजहां ने शाहजहां के पक्ष को छोड़कर शहरयार का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। कंधार की रक्षा के लिए मुगल सेना को भेजने पर के प्रश्न पर शाहजहां जहांगीर की नजरों में से गिर गया। 1623 ईस्वी में उसने विद्रोह किया, परंतु वह असफल हुआ और 1626 ईस्वी में उसे बादशाह की शर्तों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के अवसर पर शाहजहां दक्षिण भारत में था। उस समय उसकी सहायता उसके ससुर और राज्य के वकील आसफ खान ने की। राज्य का दीवान ख्वाजा अब्दुल हसन भी उसके पक्ष में था। इन व्यक्तियों ने शाहजहां के पुत्र दारासी को सूजा और औरंगजेब को नूरजहां के आधिपत्य से मुक्त करा लिया और खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया, जिससे सिंहासन खाली न रहे। आसफ खान ने शाहजहां को शीघ्र राजधानी आने की सूचना भेज दी। नूरजहां उस अवसर पर कुछ न कर सकी। वह आसफ खां के विरुद्ध कोई कदम न उठा सकी। उसी अवसर पर शहरयार ने अपने लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया और लाहौर के खजाने को सरदारों और सैनिकों में बांटकर अपने पक्ष को दृढ़ करने का प्रयत्न किया, परंतु वह अयोग्य था। आसफ खां ने उस पर आक्रमण किया, उसे परास्त करके बंदी बना लिया तथा उसकी आंखें फोड़ दी गई। शाहजहां शीघ्रता से आगरा की ओर बढ़ रहा था। और जब उसे इस सफलता की सूचना मिली तब उसने शहरयार दाबर बक्स और शाही परिवार के सभी जीवित राजकुमारों को समाप्त करने का आदेश दे दिया। आसफ खान ने ऐसा ही किया और शाहजहां के आगरा पहुंचने से पहले ही राजगद्दी के सभी उत्तराधिकारी कत्ल कर दिए गए। इस प्रकार अपने संबंधी राजकुमारों को वध करके 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां अबुल फजल मुजफ्फर साहबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। आसफ खां को 7,000 जात और 7,000 सवार तथा राज्य के वजीर के पद दिया गया। महावत खां को 7,000 जात और 7,000 सवार का पद तथा खनखाना की उपाधि दी गई। बेगम नूरजहां को 2,00,000 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दी गई। नूरजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन शांतिपूर्वक लाहौर में व्यतीत किए और वहीं 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। शाहजहां के समय की विद्रोह। शाहजहां के समय में पुर्तगालियों और सिखों से हुए साधारण संघर्षों के अतिरिक्त दो बड़े विद्रोह हुए। उनमें से एक बुंदेलखंड के शासक जुझर सिंह का था और दूसरा दक्षिण के सूबेदार खानजहां लोदी का। बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 35 ईस्वी वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का कृपा पात्र था। अकबर के समय में इसी ने शाहजादा सलीम जहांगीर के इशारे पर अबुल फजल का कत्ल किया था। जहांगीर ने अपने समय में उसे उच्च पद और सम्मान दिया था। वीर सिंह की मृत्यु जहांगीर की मृत्यु से 3 या 4 मंथ पूर्व हो गई। उसे उसके पुत्र जुझर सिंह को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया। जुझर सिंह दरबार में था और उसका पुत्र विक्रमाजीत सिंह शासन की देखभाल करता था। उसने अपनी प्रजा पर कठोरता की और बहुत धन एकत्र कर लिया। शाहजहां ने इसके लिए जांच कमेटी बैठा दी और आज्ञा जांच की दे दी, जिससे शंकित होकर जुझर सिंह दरबार छोड़कर बुंदेलखंड भाग गया। 1628 ईस्वी में जुझर सिंह पर आक्रमण किया गया। वह शाहजहां के समय का पहला सैनिक अभियान था। शाहजहां बुंदेलखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बुंदेलों शौर्य से परिचित था। इस कारण उसने प्रत्येक दिशा से बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के आदेश दिए। स्वयं शाहजहां भी शिकार के बहाने ग्वालियर पहुंच गया। जुझर सिंह ने शीघ्र अपनी स्थिति की दुर्बलता को समझ लिया। 1629 ईस्वी के आरंभ में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने 1,000 असरफियां, 15,00,000 रुपये, 40 हाथी और अपनी जागीर का कुछ भाग शाहजहां को दिया। शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया तथा उसे दक्षिण भारत के युद्ध के लिए नियुक्त कर दिया। जुझर सिंह ने 5 वर्ष तक वफादारी से मुगल बादशाह की सेवा की और दक्षिण के युद्ध में महत्वपूर्ण भाग लिया। 1634 ईस्वी में वह अपनी राजधानी ओरछा वापस चला गया। 1635 ईस्वी में उसने गोंडवाना पर आक्रमण किया, उसकी राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया और राजा प्रेम नारायण को मार दिया। एक अधीनस्थ राजा को दूसरे अधीनस्थ राजा पर बिना बादशाह की आज्ञा के आक्रमण करना मुगलों की नीति के अनुसार अपराध था। प्रेम नारायण के पुत्रों ने शाहजहां से इसके विरुद्ध रक्षा की प्रार्थना की। शाहजहां ने जुझर सिंह से मांग की कि वह गोंडवाना और 10,00,000 रुपये बादशाह को दे अथवा बुंदेलखंड की अपनी जागीर में से गोंडवाना के बराबर की जागीर बादशाह को दे। जुझर सिंह ने इस शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने औरंगजेब को एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण के लिए भेजा। मुगलों ने ओरछा पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया और भरत सिंह के पुत्र देवी सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। जुझर सिंह और उसका पुत्र विक्रमाजीत जबकि वे जंगल में आराम कर रहे थे गोंडों के द्वारा मार दिए गए तथा उनके सिर काटकर शाहजहां के पास भेज दिए गए। जुझर सिंह के 2 पुत्रों एवं 1 पोते को मुसलमान बना दिया गया। 1 पुत्र और 1 वृद्ध मंत्री का वध कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा बुंदेला स्त्रियों को महल या सरदारों की सेवा में दे दिया गया। इसके अतिरिक्त ओरछा के मंदिर बर्बाद कर दिए गए अथवा मस्जिदों में बदल दिए गए। शाहजहां की विजय पूर्ण थी और उसे बहुत सी भूमि और धन प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1635 ईस्वी में यह विद्रोह समाप्त हुआ। परंतु बुंदोले ने देशद्रोही देवी सिंह को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। महोबा के राजा चंपत राय और उसके पश्चात उसके पुत्र छत्रसाल ने मुगलों का निरंतर विरोध किया और बुंदोलों के स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। दूसरा, खानजहां लोदी का विद्रोह 1628 ईस्वी। पीर खां उर्फ खानजहां लोदी एक योग्य और सम्मानित अफगान सरदार था। जागीर के अंतिम दिनों में वह दक्षिण की सूबेदारी के महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहा था। शाहजहाँ के विद्रोह के अवसर पर वह उदासीन रहा। शाहजहाँ के सहायता मांगने पर उसने उसे कोई सहायता न दी। उसी अवसर पर उसने दक्षिण के राज्यों को समझौता करने का प्रयत्न किया और 3 लाख रुपया लेकर बालाघाट अहमदनगर को सौंप दिया। संभवतया अपनी अफगान प्रवृत्ति के अनुकूल वह राज जहांगीर की मृत्यु के अवसर पर ही व्यवस्थित स्थिति का लाभ उठाकर दक्षिण में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए लायित हो गया। जहांगीर ने महावत खां को खानखाना का पद दे दिया। इससे भी वह असंतुष्ट था क्योंकि जहांगीर के समय में यह पद उसे दिया गया था, परंतु जब शाहजहाँ को आगरा का बादशाह घोषित कर दिया गया तो उसने तुरंत शाहजहाँ को बादशाह स्वीकार कर लिया। शाहजहाँ ने उसे बालाघाट को पुनः प्राप्त करने के आदेश दे दिए। उसी बर्फ जुझर सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए भी उसे सहायता ली गई, परंतु खानजहाँ बालाघाट को जीतने में असफल रहा। शाहजहाँ ने दक्षिण की सूबेदारी महावत खां को दे दी और मालवा खानजहाँ को दे दिया। बुंदेला विद्रोह के शांत हो जाने पर 1629 ईस्वी खानजहाँ को दरबार में आने के आदेश दिए गए। उसे यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो जहांगीर के समय में प्राप्त होता था। शाहजहाँ के आश्वासन के बाद भी खानजहाँ अपने को जीवन का खतरा रहा और इस भय से आशंकित होकर अक्टूबर 1629 ईस्वी में वह बिना बादशाह की आज्ञा के दक्षिण की ओर भाग खड़ा हुआ। शाही सेना ने उसका पीछा किया। चंबल नदी किनारे पर एक युद्ध हुआ और खानजहाँ को अपने कुछ एक संबंधियों और स्त्रियों को छोड़कर भागना पड़ा। खानजहाँ अहमदनगर पहुँच गया। मुर्तजा निजाम शाह ने उसका स्वागत किया, उसे वीर की जागीर दी और मुगलों के आधिपत्य में चली गई। अहमदनगर की भूमि को वापस लेने का उत्तरदायित्व उसे सौंपा। खानजहाँ के दक्षिण में पहुंच जाने से दक्षिण की समस्या जटिल हो गई। अहमदनगर ने मुगलों से कुछ भूप्रदेश छीन लिए। दक्षिण की ऐसी स्थिति हो गई कि स्वयं शाहजहाँ को 1629 ईस्वी में दक्षिण भारत जाना पड़ा। शाहजहाँ ने सर्वप्रथम खानजहाँ को दबाने की योजना बनाई और उस पर 3 तरफ से आक्रमण किया। खानजहाँ को स्थान स्थान पर भागना पड़ा। वह भाग कर दौलताबाद की ओर गया और बीजापुर की सहायता लेने का प्रयत्न किया, परंतु वह सफलता न मिल सकी। मुगलों के दबाव के कारण निजाम शाह भी तटस्थ हो गया और खानजहाँ के पास दक्षिण को छोड़कर भागने के अलावा कोई अन्य मार्ग न रहा। उत्तर पश्चिम में उसे अफगानों की सहायता मिलने की आफा थी। खानजहाँ ने नर्मदा नदी को पार किया और मालवा होकर उत्तर की ओर जाने का प्रयत्न किया। मार्ग में जुझर सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने उस पर आक्रमण किया और खानजहाँ के अधिकांश साथियों को मार दिया, परंतु खानजहाँ यहाँ से बच निकला। तब मुजफ्फर खां सैयद ने उसका पीछा किया। मार्ग में एक एक करके उसके सभी साथी और पुत्र मारे गए। कालिंजर के किलेदार ने उसके हाथी छीन लिए और अंत में बांदा जिले में सिहुंदा नामक स्थान पर खानजहाँ ने अंतिम युद्ध किया और माधव सिंह के हाथों मारा गया। उसका सिर काटकर शाहजहाँ के पास भेज दिया गया। इस प्रकार 1631 ईस्वी में खानजहाँ का विद्रोह समाप्त हो गया।